नमस्कार भारत, 28 जून दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जनमत संग्रह के बाद हुए नस्ली हमलों की भर्त्सना की, कहा देश को एकजुट करना होगा।
We have a fundamental responsibility to bring our country together. In the past few days, we've seen despicable graffiti daubed on a Polish community.
भारत में एक निजी टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार प्रसारित होने के बाद उठे कई सवाल।
जहां तक पत्रकारिता का और एक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, इस तरह के इंटरव्यू सवाल उठाते हैं एक जर्नलिस्ट के कैपेसिटी के, प्रश्न चिन्ह उठते हैं, ये तो एकदम प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक पार्ट लगता है।
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता से भारत को क्या हासिल हुआ, सुनिए समझिए समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। ब्रेक्सिट के नतीजों से ब्रिटेन को एक और झटका लगा है। यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में बहुमत में वोट पड़ने के बाद दो रेटिंग एजेंसियों ने ब्रिटेन को नकारात्मक रेटिंग दी है। फिच एजेंसी ने कहा है कि जनमत संग्रह का असर ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ब्रिटेन की ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग हटा दी है और इसमें और गिरावट की चेतावनी दी है। इस बीच ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन को अविश्वास प्रस्ताव का आज सामना करना पड़ेगा। लेबर पार्टी के करीब 40 सदस्य अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। फ्रांस के सुरक्षा नियमों में सेंध लगाते हुए करीब 1,00,000 पुलिसकर्मियों के नाम और पते इंटरनेट पर जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में पेरिस में दो पुलिस अधिकारियों की जिहादियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस विभाग के स्वास्थ्य और बीमा मामलों को देखने वाली संस्था के अधिकारियों ने कहा है कि किसी असंतुष्ट कर्मचारी ने ये काम किया है। संस्था ने बताया है कि पासवर्ड से सुरक्षित होने की वजह से जानकारी किसी के हाथ लगना संभव नहीं लग रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के खिलाफ टेक्सास राज्य में लाए गए कानून को खारिज कर दिया है। गर्भपात के अधिकार के पक्ष में काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने इसे अपनी जीत माना है। कार्यकर्ताओं की दलील थी कि 2013 में बनाए गए इस कानून से गर्भपात के अधिकार से महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ने इस कानून को समर्थन दिया था। टेक्सास के अधिकारियों का कहना था कि ये कानून महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लाया गया था। वहीं एक गर्भपात क्लिनिक की वकील नैन्सी नॉर्थप ने ये कहा।
Without question, today's Supreme Court decision is a game changer.
बिना किसी सवाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रहार के मामले में दिशा बदलने वाला ये फैसला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार करने वाले सभी कानूनों को खत्म करने के लिए काम करते रहेंगे। ये थे नैन्सी नॉर्थप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की इजिप्ट एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जांचकर्ताओं ने ठीक कर लिया है। इस विमान हादसे में 66 लोगों की मौत हो गई थी। रिकॉर्डर से अब विमान के भूमध्य सागर में गिरने की वजह का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि विमान के कॉकपिट का रिकॉर्डर कुछ ही घंटों में काम करना शुरू कर देगा और इसे कल काहिरा से पेरिस लाया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने इस हादसे के मामले में हत्याओं के मामले को बनाकर जांच शुरू की है। कोलंबिया की सेना ने कहा है कि कल लापता हुए एक हेलीकॉप्टर का पता लगा लिया गया है। इस हेलीकॉप्टर में 17 लोग सवार थे। ये सभी सेना के कर्मचारी हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। आज आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में ब्रिटेन की साख गिर रही है। क्रेडिट एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ब्रिटेन की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यूरोपीय संघ के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने के अपने फैसले का बचाव किया है और एकजुटता पर बल दिया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक उठापटक जारी है। ब्रिटेन ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर की शीर्ष ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग गंवा दी है। S&P का कहना है कि जनमत संग्रह के नतीजे से ब्रिटेन के आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है, जिसमें उसका विशाल वित्तीय सेवा क्षेत्र भी शामिल है। वहीं सरकार के अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने से बचाने का भरोसा दिए जाने के बावजूद लंदन के शेयर बाजार और पाउंड की कीमत में गिरावट का दौर जारी रहा। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर अपनी पार्टी में बगावत का सामना कर रहे ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन को आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। कल लेबर पार्टी की हंगामेदार संसदीय बैठक में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व पर गुप्त मतदान कराने का फैसला किया गया था। लेबर पार्टी यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में थी, लेकिन पार्टी सांसदों का आरोप है कि कॉर्बिन ने इसके लिए मजबूती से अभियान नहीं चलाया। वहीं ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के फैसले के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा,
I am clear and the cabinet agreed this morning that the decision must be accepted.
मैं और कैबिनेट इस पर सहमत हैं कि फैसले को स्वीकार किया जाए और इसे लागू करने की प्रक्रिया ठीक तरह से शुरू की जानी चाहिए, लेकिन ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम देश को एकजुट बनाए रखें। कुछ दिनों से हम अल्पसंख्यकों पर मौखिक और लिखित टिप्पणियां देख रहे हैं, जिन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का देश में खास योगदान है। डेविड कैमरन के शब्द। डेविड कैमरन के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर 2 सितंबर तक फैसला होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के लिए बोरिस जॉनसन के नाम पर चर्चा गर्म है। बोरिस जॉनसन ने UKIP पार्टी के नेता नाइजल फराज के साथ यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने के लिए जोरदार अभियान चलाया था। उधर जर्मनी, इटली और फ्रांस ने कहा है कि यूरोपीय संघ तब तक ब्रिटेन से ब्रेक्सिट को लेकर कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं करेगा जब तक बाहर निकलने के लिए आर्टिकल 50 की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ से बाहर होने पर कराए गए जनमत संग्रह में 52% लोगों ने बाहर निकलने के पक्ष में वोट डाले थे। उधर ब्रसेल्स में आज यूरोपीय संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी यूरोपीय नेताओं को ब्रिटेन में मची राजनीतिक उठापटक की जानकारी दे सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। रुख कर रहे हैं भारत का, जहां एक निजी टीवी चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साक्षात्कार प्रसारित किया है। इसमें मोदी ने अपनी विदेश नीति का गुणगान और रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की तारीफ की है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं वात्सल्य राय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के करीब 2 सालों में पहली बार एक निजी भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। मोदी ने टाइम्स नाउ चैनल पर कल प्रसारित हुए करीब 1.5 घंटे लंबे इंटरव्यू में कालाधन, महंगाई, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के आरोपों समेत कई सवालों के जवाब दिए। मोदी ने अमेरिका के साथ संबंधों पर कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वो अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। NSG में भारत की दावेदारी पर चीन के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि विदेश नीति माइंडसेट बदलने के लिए नहीं होती, हर देश से मिलकर चलना होता है। वहीं केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर पड़ोसी के साथ दोस्ती चाहता है।
पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा का फैसला किसके साथ करोगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि और एक्टर्स के साथ? और इसलिए भारत ने हर पल सजग रहना पड़ेगा। मेरे इन लगातार प्रयासों के परिणाम मेरा लाहौर जाना, मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाना, दुनिया को अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है और पाकिस्तान को जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है।
मोदी भले ही अपनी सरकार की चीन और पाकिस्तान नीति की सराहना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि केंद्र सरकार इन दोनों पड़ोसियों के साथ एक ठोस विदेश नीति नहीं बना सकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं,
जब पठानकोट में टेरर अटैक्स हुए उसके बाद हमने पाकिस्तान की टीम को आकर वहाँ पे इंस्पेक्शन करने का मौका दिया, जब हमारी बारी आई पाकिस्तान ने अग्री नहीं किया, तो 26/11 को लेकर भी जो टेरर अटैक्स मुंबई में हुए थे उस पर भी कुछ चीजें आगे नहीं भरी हैं। चाइना को लेकर हमने देखा किस तरीके से चाइना ने हमारे NSG मेंबरशिप पे अड़ंगा डाला, तो प्रधानमंत्री जी अपनी दो साल का, मैं कहूंगी वो अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसे बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर मुद्दे हैं जहां पर हमारी सरकार एक ठोस पॉलिसी नहीं दे पाई है।
वहीं जनता दल यूनाइटेड के सांसद केसी त्यागी भी केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवालिया निशान लगाते हैं।
पिछले दो साल में जो सीमाओं के अतिक्रमण है वो यूपीए 1-2 से ज्यादा हुए हैं, हमारे सैनिक ज्यादा हताहत और शहीद हुए हैं, घुसपैठिए पहले से ज्यादा आए हैं।
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की भी जमकर तारीफ की।
मेरा दो साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूं हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है।
हालांकि कांग्रेस को लगता है कि मोदी ने रघुराम राजन के बचाव में उतरने में काफी देर कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं,
टू लिटिल टू लेट। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ने प्रधानमंत्री को ये लिखा था कि ही इज नॉट फुल्ली मेंटली इंडियन, तब इस समय पर प्रधानमंत्री को इंटरवीन कर उनको कहना चाहिए था कि आप राज्यसभा एमपी भले ही हैं पर सिस्टम के ऊपर नहीं हैं। तब प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी बनाए रखी।
वहीं जेडीयू सांसद केसी त्यागी का मानना है कि स्वामी का निशाना राजन थे ही नहीं।
जो सुब्रमण्यम स्वामी का प्रहार है असल में रघुराज राजन पे और अरविंद सुब्रमण्यम पे नहीं है, उनका प्रहार है श्री अरुण जेटली पर। 1990 में भी वो वित्त मंत्री बनना चाहते थे, तब से वो परेशान है।
विपक्षी दलों ने मोदी के इंटरव्यू को सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश बताया। उनका कहना था कि इंटरव्यू में मोदी से कई अहम मुद्दों पर सवाल पूछे ही नहीं गए, हो सकता है कि इन सवालों का जवाब देने में उन्हें मुश्किल होती।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। प्रधानमंत्री मोदी के इस साक्षात्कार ने यूं तो खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन ये साक्षात्कार अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। जैसे क्या प्रधानमंत्री से एक पत्रकार की तरह सवाल पूछे गए थे, क्या ये साक्षात्कार एक तरह का प्रोपेगेंडा था, और जब मन की बात कहने के लिए मोदी के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास सरकारी रेडियो और दूरदर्शन जैसे माध्यम पहले से मौजूद हैं तो उन्हें एक निजी चैनल को साक्षात्कार देने की क्या जरूरत पड़ी। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से बात की।
मकसद तो ये है कि वो गवर्नमेंट मशीनरी से बाहर जाके एक अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इम्प्रेशन लोगों को यही दे रहे हैं कि देखिए मैं जर्नलिस्ट के सामने आके जो भी सवाल मेरे से पूछे गए हैं मैंने उनका जवाब दिया है, सरकार की जो भी कामयाबी है लोगों के सामने पेश की है। पर मेरे को लगता है कि मोटे तौर पे दूरदर्शन इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में कोई खास फर्क नहीं था जिस तरह से ये कंडक्ट किया गया है।
खासकर सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी को लेकर जिन्होंने इंटरव्यू किया, क्योंकि बाकी लोगों के सामने और अपने प्रोग्राम में तो उनके बहुत तेवर ऊंचे रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं।
नहीं, ये तो एकदम प्रीस्क्रिप्टेड इंटरव्यू लग रही थी। जो सवाल पूछे भी गए उनके जो फॉलोअप नेचुरल फॉलोअप सवाल उठते हैं वो भी नहीं पूछे, एकदम सीधे सीधे सवाल जो कोई भी ढंग का जर्नलिस्ट जो सवाल पूछता वो नहीं पूछे गए। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। रघुराम राजन के बारे सवाल पूछे, मोदी जी ने कहा कि रघुराम राजन एक बड़े पेट्रियोटिक सिटीजन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये सवाल नेचुरल था कि उनको दूसरी टर्म क्यों नहीं दी गई, ये सवाल नहीं पूछा गया। उन्होंने ये कहा कि जो लोग कम्युनल कमेंट्स करते हैं, कम्युनल स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको कोई अटेंशन नहीं पे करनी चाहिए। पर आप अटेंशन कैसे नहीं पे करेंगे अगर उनको आपने कैबिनेट में बिठा के रखा हुआ है, इसके बारे कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब पाकिस्तान पे ले लीजिए, जो रवैया रहा है मोदी का जब वो अपोजिशन में थे और सरकार में आके, कल ही CRPF जब वहां पे अटैक हुआ है, जो मोदी अपोजिशन पे थे एक तरह से रिएक्ट करते, आज किसी और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आया उनके विचारों में, इस पे कोई सवाल नहीं था। दूसरी बात है सुब्रमण्यम स्वामी को लेके उन्होंने एक जेनरिक तौर पे टोका के ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए, पर उनको राज्यसभा एमपी तो अभी मोदी जी ने बनाया है, तो क्या एक्शन लेंगे? आपके पार्टी के राज्यसभा एमपी हैं, इनडिसिप्लिन सामने आ रहा है, कई चीजें कही जा रही हैं, इसके बारे क्या करेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर आके सिर्फ रेडियो या टेलीविजन पे स्टेटमेंट देंगे?
और चीन के मुद्दे पर भी शायद वो कुछ साफ जवाब नहीं दे सके जब एनएसजी का मुद्दा उठाया था।
एक तो यही बता दें कि एनएसजी इतना जरूरी क्या था कि प्राइम मिनिस्टर को जाके लिटरली चाइना के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस पे कोई सवाल नहीं थे। सवाल थे पर उनको किसी भी स्पेसिफिक तौर पे प्रेस नहीं किया गया, जवाब नहीं मांगे गए।
तो जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है कि मोदी ने मुश्किल सवालों के जवाब ना दिए और ना उनसे पूछे गए, तो इस इंटरव्यू को देने का मकसद आप समझते हैं कि पूरा हुआ?
मोदी के लिए इसका क्या फायदा है कि लोगों के बीच में गए हैं, कल खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं जर्नलिस्ट के सामने था, अगर जर्नलिस्ट को सवाल पूछने थे पूछते, मैं तो मीडिया के सामने हमेशा आ जाता हूं। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इस प्रधानमंत्री ने, पर कह सकते हैं मैंने अपने आप को सवालों के सामने खड़ा किया है खटखरे में, तो एक तो ये डिफेंस हो जाएगा मोदी का। जहां तक फायदा है अर्नब का या चैनल का, तो टीआरपी बढ़ेंगी, लोग देखेंगे, पर जहां तक पत्रकारिता का और एक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, उसमें किसी का फायदा नहीं हुआ। इस तरह के इंटरव्यू सवाल उठाते हैं एक जर्नलिस्ट के कैपेसिटी के। मैं यहां तक कहूंगा कि अर्नब एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट या एक ऐसा जर्नलिस्ट जो सरकार से सवाल पूछता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं, ये तो एकदम प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक पार्ट लगता है। आप इसी अर्नब की इंटरव्यू को कंपेयर करिए जब राहुल गांधी को इंटरव्यू किया था अर्नब, जब कांग्रेस पावर में थी, और अर्नब का रवैया और जिस तरह के सवाल पूछे गए उसको आज कंपेयर करिए जब मोदी पावर में है और अर्नब का रवैया और जिस तरह के सवाल पूछे गए।
जैसे कई लोग कह रहे थे कि ये इंटरव्यू मन की बात का एक्सटेंशन उन्हें लगा।
एकदम मन की बात का ही एक्सटेंशन है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठ के जो कहना चाहते हैं बोले जा रहे हैं, और आगे जो पत्रकार बैठा है कहीं पे भी उन्हें रोक के टोक के सवाल नहीं पूछ रहा है जो पूछे जाने चाहिए।
भारत में एक निजी टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार प्रसारित होने के बाद उठे कई सवाल, ये थे वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल। और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में ये खबर किन शब्दों में छपी है। हरिता कांडपाल कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से मोदी की तस्वीर के साथ यही खबर छपी है कि मोदी ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्या क्या कहा। तो कई अखबारों ने सुब्रमण्यम स्वामी का मुद्दा उठाया है, कई लोगों ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है, इस तरह से इस खबर को लिया गया है। पहली बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि मोदी ने स्वामी को छिड़का, कहा यह ठीक नहीं, एक स्टंट है। सुब्रमण्यम स्वामी के भाजपा नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जो उन्होंने निशाना साधा, उसके अलावा उन्होंने रघुराम राजन पर जो निशाना साधा, उसके संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। और उसके अलावा एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, उसमें एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने भारत का पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि भारत के हितों का ख्याल रखना ही होगा। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि प्रधानमंत्री का स्वामी को साफ संदेश, कहा कि पब्लिसिटी स्टंट से देश का भला नहीं होगा। इसके अलावा अखबार ने यह भी लिखा है कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों पर सुब्रमण्यम के स्वामी के हमलों पर असहमति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजन की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं हो सकता। इसके अलावा इस इंटरव्यू की चर्चा पाकिस्तान के अखबारों में भी हुई है। द डॉन ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि उनके राजनयिक प्रयासों को दुनिया ने देखा है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत में आनाकानी नहीं कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख की तारीफ कर रही है। इंटरव्यू का जिक्र करते हुए टाइम्स नाउ चैनल का ट्वीट भी द डॉन ने छापा है, उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान को दुनिया को जवाब देना भारी पड़ रहा है, दुनिया सब देख रही है। इससे पहले जिक्र कर दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज कह चुके हैं कि भारत ने कभी भी बातचीत के लिए खिड़की नहीं खोली है और भारत की तरफ से आनाकानी हुई है, इस तरह के संकेत उन्होंने पहले दिए हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दूसरी खबरों की जब बात करें तो संपादकीय पन्नों पर मैंने सोचा था कि शायद ये खबर मुझे देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ब्रेक्सिट की चर्चा संपादकीय पन्नों पर मैं देख रही हूँ। ब्रेक्सिट की चर्चा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में है संपादकीय में, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में भी इस खबर ब्रेक्सिट पर लेख हैं। इस पर मैं एक सुनाती हूँ कि पैट्रिक फ्रेंच हैं, उन्होंने लिखा है कि अब तक कई दशकों से यूरोपीय संघ में राजनयिक जो कि लोकतांत्रिक तौर पर चुने नहीं गए हैं वो ही प्रशासन चला रहे थे और उन पर ही दोष मढ़ा जा रहा था जो भी नीतियां थी उनके लिए, लेकिन अब चूंकि ब्रिटेन अलग होने वाला है तो इंग्लैंड को अब दोष देने के लिए नए लोगों को चुनना होगा, शायद वो नेता ही होंगे, तो इसके लिए नई चीज़ें अब सामने आएंगी। इसके अलावा अलावा ये भी लिखा गया है कि जो मुसलमानों और काले लोगों या फिर जो गोरे नहीं हैं दूसरी मुल्कों से आए हुए लोगों पर जो वहाँ पर नस्लीय टिप्पणियाँ की गई हैं और जो संदेश लिखे गए हैं कई जगह उसको लेकर भी जो है वहाँ पर चिंता खड़ी हो गई है। इसके अलावा हम एक और ख़बर का रुख करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में पंपोर में जो हमला हुआ सीआरपीएफ जवानों पर, उसमें सेना और सीआरपीएफ दोनों होड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चरमपंथियों को हमने मारा। हालांकि सीआरपीएफ ने कहा है कि सेना ने हमारे हथियार वहां से उठा लिए थे और फिर वापस भी कर दिए, और सेना ने भी अपनी बात कही है कि हमने मारा चरमपंथियों को, तो इस तरह की बात सामने आई है। इसके अलावा द हिंदू अखबार ने पिछले महीने पुलगांव में जो एम्यूनेशन डिपो में धमाके हुए थे और उसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें कहा गया है कि खराब बारूदी सुरंगों की वजह से ये धमाके हुए हैं।
बहुत शुक्रिया विस्तार से समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। ये थी हरिता कांडपाल।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे खेल समाचार, लेकिन उससे पहले बात मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR की। भारत को MTCR की सदस्यता मिल गई है। भारत इसका 35वां सदस्य हो गया। भारत के लिए MTCR की सदस्यता के क्या मायने हैं, भारत को इससे क्या हासिल होगा, वात्सल्य राय ने यही सवाल पूछा रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर से।
ये जो MTCR का एडमिशन है ये भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि जितने भी विश्व में महाविनाशक हथियारों को रेगुलेट करने के लिए उनके ऊपर जो पाबंदियां डाले गए हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, वो एक प्रकार से सब भारत को ही टारगेट कर रहे थे। ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ध्यान से MTCR के मेंबर उसका व्यापार के ऊपर कई प्रकार के उन्होंने कानून नियम और पाबंदियां डाले हैं। भारत उसका शिकार बना था कई साल पहले जब रूस जो है भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने का कुछ एक प्रोग्राम बन रहा था, बाकी देशों ने विरोध किया था और रशिया उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दे पाया। तो अभी MTCR में सदस्यता मिलने के बाद भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी जुड़े हुए हाईटेक है वो हम बाकी देशों से प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा अगर भारत अपने ही मिसाइल कैपेबिलिटी या उस टेक्नोलॉजी को किसी और देश को देना चाहते हैं, उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो भी फिर उसके लिए प्रावधान हो जाता है। मैं कहूंगा कि MTCR की मेंबरशिप भारत के लिए एक काफी सकारात्मक कदम है।
ये ग्रुप किस तरह से काम करता है और इससे क्या फायदा पूरी दुनिया को है?
उद्देश्य एक ही है कि विश्व में महाविनाशक हथियार सामग्री जानकारी इसके ऊपर निगरानी भी हो और पाबंदी भी। MTCR भारत के लिए विश्व के लिए एक बहुत ग्रुपिंग भी है, और चुनौती ये है पाकिस्तान ने एक ऐसा AQ-Khan नेटवर्क को उन्होंने समर्थन दिया था जो न्यूक्लियर वॉलमार्ट कहा जाता था विश्व का, यानी कि वो क्लैंडेस्टाइन या गैर कानून न्यूक्लियर व्यापार का एक नेटवर्क था। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इसी गैर कानून नेटवर्क में इसको भी देश या गैर राष्ट्र गुट जो है इसको प्राप्त करने की कोशिश में थे, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया भी शामिल है, चीन इसका समर्थन दे रहा था, यानी कि ये बड़ा जटिल है। ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस वक्त विश्व के लिए खतरा AQ-Khan जैसे नेटवर्क, अलकायदा, तालिबान, लश्कर ए तैयबा, इस्लामिक स्टेट जैसे गुट और दहशतगर्दी को इस सामग्री या इस क्षमता के साथ बढ़ाना या बढ़ोतरी देने का जो उद्देश्य है उसको काबू में लाना बहुत जरूरी है।
चीन भी MTCR की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में है, 2004 से उसने आवेदन किया हुआ है लेकिन उसे सदस्यता अभी तक नहीं मिली है, तो ऐसे में क्या भारत के पास कोई बढ़त होगी?
मेरे ख्याल से भारत और चीन में अंतर अभी ये है कि आज के हस्ताक्षर के बाद भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का सदस्य बन गया है, चीन इस रेजिम का मेंबर नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चीन 2004 में मेंबर बन गया था। भारत का जो एप्लीकेशन है वो असफल रहा। कई लोग ये मानते हैं कि भारत को किसी प्रकार का सौदा करना चाहिए कि हम चीन को MTCR में शामिल होने के लिए हम किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और हम यही चाहते हैं कि चीन भारत को NSG में शामिल होने के लिए अपना जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए। मेरे ख्याल से इस प्रकार का ये इतना आसान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि दोनों गुटों में चाहे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम हो, और भी सदस्य हैं, सारे निर्णय सहमति से बनता है। और चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मिसाइल प्रोलिफरेशन में वो तो बड़ा स्लेपी है, सनासी की बात है। सऊदी अरेबिया को उन्होंने CSS-2 नामक एक मिसाइल उन्होंने सप्लाई किया था। उसके बाद कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जहां चीन ने MTCR के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने कई देशों को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिया, जिसमें उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए चीन का जो MTCR का एडमिशन भारत के कहने से या भारत के मंजूरी से नहीं होगा।
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता भारत को मिली, इस बारे में और जानकारी दे रहे थे रक्षा मामलों के जानकार उदय भास्कर।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
नमस्कार, भारत में अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत के साथ शुरुआत करते हुए ब्रिटेन के जेम्स वार्ड को हराए तो जरूर, लेकिन थोड़ा पसीना बहाने के बाद पहला सेट जोकोविच ने 6-0 से आसानी से जीता, लेकिन अगला सेट उन्होंने टाई ब्रेकर में 7-6 से जीता, तो तीसरा सेट 6-4 के स्कोर के साथ। उनके अलावा 28वीं वरीयता हासिल अमरीका के सैम क्वारी को भी चेक गणराज्य के लुकास रसूल को हराने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। क्वारी 6-7, 6-7, 6-4, 6-2 12-10 से जीते। वहीं फ्रांस के निकोलस माहुत ने ब्रिटेन के ब्रैडियन क्लिन को 7-6, 6-4, 6-4 से, 13वीं वरीयता हासिल स्पेन के डेविड फेरर ने इसराइल के डूडी सेला को आसानी से 6-2, 6-1, 6-1 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में ही स्पेन के निकोलस एल्बर्गो को ब्राजील के रोजेरियो दुर्ता सिल्वा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। एल्बर्गो 6-3, 7-6, 5-7, 3-6, 6-3 से जीते। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने अमेरिका के बिजोन फ्राटेंगलो को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। 9वीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के मारिन चिलिच ने अमेरिका के ब्रायन बाकेर को 6-3, 7-5, 6-3 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया, तो क्रोएशिया के इवो कार्लोविच ने अपने ही हमवतन बोर्ना सोरिस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया। महिला एकल वर्ग में 14वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टुसुर ने पोलैंड की मैग्डा लिनेटा को 7-5, 6-3 से, तो जर्मनी की सबीने लिसिकी ने अमेरिका की शेल्बी रोजर्स को 6-1, 6-3 से, और रूस की दारिया कासात्किना ने अमेरिका की विक्टोरिया डुआल को 6-0, 7-5 से हराया। इनके अलावा इटली की सारा ईरानी ने रोमानिया की पैट्रिसीना मारिया टिक को 6-4, 6-4 से, और 8वीं वरीयता हासिल अमेरिका की वीनस विलियम्स ने क्रोएशिया की डोना वेरिक को 7-6, 6-4 से, और जापान की कुस्मिनारा ने अमेरिका की मेडिसन ब्रेंगले को 6-2, 6-7, 6-3 से मात दी। उधर लंदन में समाप्त हुई महिलाओं की हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को अर्जेंटीना ने अपने नाम करते हुए फाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया।
खेल समाचारों के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। ब्रेक्सिट के नतीजों से ब्रिटेन को एक और झटका लगा। यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में बहुमत में वोट पड़ने के बाद दो रेटिंग एजेंसियों ने ब्रिटेन को नकारात्मक रेटिंग दी है। फिच एजेंसी ने कहा है कि जनमत संग्रह का असर ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ब्रिटेन की AAA क्रेडिट रेटिंग घटा दी है और इसमें और गिरावट की चेतावनी दी है। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न ने कहा है कि वो डेविड कैमरन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता या फिर प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। फ्रांस के सुरक्षा नियमों में सेंध लगाते हुए करीब 1,00,000 पुलिसकर्मियों के नाम और पते इंटरनेट पर जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में पेरिस में 2 पुलिस अधिकारियों की जिहादियों ने हत्या कर दी थी। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के खिलाफ टेक्सास राज्य में लागू किए गए कानून को खारिज कर दिया है। गर्भपात के अधिकार के पक्ष में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। मिस्र की इजिप्ट एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जांचकर्ताओं ने ठीक कर लिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला कार्यक्रम विश्व भारती अब से ठीक एक घंटे के बाद हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।